36वां बाब यहूदा का बादशाह यहू आखज। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहू आखज को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहू आखज 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहू यकीम रखा। और निको उसके भाई यहू आखिज को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहूदा का बादशाह यहू यकीम।
यहू यकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। उस पर शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। और नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर के कुछ जरूफ भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहू यकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहू याकीन उसकी जगह बादशाह हुआ।
यहूदा का बादशाह यहू याकीन। यहू याकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावन की नजर में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावन के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। यहूदा का बादशाह सिदकिया।
सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजजी ना की।
सकूते यरूशलेम। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी बगावत की, बल्कि वो गर्दनकश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ रजू न लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावन के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावन उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदावन का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा न रहा। चुनांचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया जिसने उनके मकदिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कमवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस न खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब जरूफ क्या बड़े क्या छोटे और खुदावन के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती जरूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावन का वो कलाम جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پا لے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ خورش بادشاہ کا یہودیوں کی اپنے وطن واپسی کا فرمان۔
اور شاہ فارس خورش کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورش کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی، اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔